लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि क्रिस्त के सुसमाचार के प्रति निष्ठावान और सदैव धर्माधीक्षित धर्म सभा की संयुक्ति में जीवन यापन कर कलीसिया एकात्मता, भ्रातृत्व और आतिथेय का समुदाय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन में युद्ध पर परमाणु हथियारों के खतरे एवं सैन्य वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने पूरे संदेश को वहां की स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने एवं शक्तिशालियों से तत्काल युद्ध विराम की अपील करने के लिए समर्पित किया। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के पूर्व विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बुंजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
लंडामेंटो देला गुएर्रा इन उक्राइना ए डिवेंटातो टालमेंटे ग्रावे।
यूक्रेन में युद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर, विनाशकारी और खतरनाक हो चुकी है, जिससे बहुत अधिक चिंता बढ़ गई है। इसलिए आज मैं देवदूत प्रार्थना के पूर्व अपने पूरे चिंतन को इसी पर केंद्रित करना चाहता हूँ। निश्चय ही मानवता के लिए इस भयानक एवं अकल्पनीय घाव से उपचार के बजाय और अधिक खून बह रहा है तथा इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है।
Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi.
मैं बहुत दुखी हूँ कि इन महीनों में खून और आंसू की नदियाँ बहे हैं। मैं हजारों पीड़ितों के लिए परेशान हूँ, विशेषकर बच्चों के लिए तथा उस विनाश के लिए जिसने कई लोगों एवं परिवारों को बेघर कर दिया है एवं जिसने एक विशाल क्षेत्र को ठंड एवं भूख के लिए खोल दिया है। ऐसे कृत्यों को कभी भी न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। यह परेशान करने वाला है कि दुनिया यूक्रेन के भूगोल को बूचा, इरपिन, मारियोपोल, इजियम, जपोरिया और अन्य क्षेत्रों जैसे नामों से जान रही है, जो अवर्णनीय पीड़ा एवं भय के स्थान बन गए हैं। इस तथ्य के बारे में क्या है कि मानवता एक बार फिर परमाणु खतरे का सामना कर रही है? संत पापा के शब्द। संत पापा ने युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा, आगे क्या होगा और कितना खून बहना बाकी है? हम कब चेतना में आएंगे कि युद्ध से कभी भी हल नहीं होता, केवल विनाश होता है? ईश्वर के नाम और मानवता की भावना के नाम पर जो हर एक व्यक्ति के हृदय में है, मैं तत्काल युद्ध विराम की अपील करता हूँ। आइए हम हथियारों को विराम दें और समझौते की शर्तों की खोज करें जो हमें समाधान की ओर ले जाएगा। उससे बल द्वारा थोपा नहीं जा सकता, बल्कि सहमति, न्यायसंगत और स्थिरता से प्राप्त किया जा सकता है। संत पापा ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब मानव जीवन के पौत्र मूल्य के साथ साथ प्रत्येक देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं बाह्य चिंताओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने परमाणु हथियारों के खतरे को देखते हुए कहा,
La grave situazione creatasi negli ultimi giorni.
मैं उस गंभीर स्थिति की कड़ी निंदा करता हूँ जिसमें हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय नियम के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्रवाई किए गए हैं, जो दुनिया भर में अनियंत्रित एवं विनाशकारी परिणामों की आशंकाओं को उत्पन्न करते हुए परमाणु हथियार की वृद्धि के जोखिम को बढ़ा रहा है। तब संत पापा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संबोधित कर कहा, मेरी अपील सबसे पहले और सबसे बढ़कर रूस के राष्ट्रपति से है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस हिंसा एवं मौत की कुंडली को रोकें, कम से कम अपने लोगों के खातिर। फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा,
अदोलोरातो per l'immane sofferenza della popolazione ucraina.
हमले के कारण यूक्रेनी लोगों की अत्यधिक पीड़ा से दुखी होकर मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से उसी दृढ़ता से अपील करता हूं कि वे शांति के लिए गंभीर प्रयासों के प्रति खुले रहें। तत्पश्चात पोप ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नायकों एवं राष्ट्रों के राजनीतिक नेताओं से अपील की कि वे युद्ध के अंत के लिए हर संभव प्रयास करें, युद्ध की भयंकर वृद्धि में सहयोग न दें बल्कि वार्ता के प्रयास को सहयोग एवं समर्थन प्रदान करें, जिससे युवा पीढ़ी शांति की हितकारी हवा में सांस ले सके, न कि युद्ध की दूषित हवा में, जो एक पागलपन है। संत पापा ने नेताओं का आह्वान करते हुए कहा, 7 महीनों के युद्ध के बाद आइए हम हर प्रकार के कूटनीतिक साधनों का प्रयोग करें ताकि इस खतरनाक त्रासदी का अंत किया जा सके। युद्ध अपने आप में एक त्रुटि है और खौफनाक है। तब संत पापा ने माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करने हेतु विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा,
Confidiamo nella misericordia di Dio।
आइए हम ईश्वर की करुणा पर भरोसा करें जो हृदय बदल सकते हैं, तथा शांति की रानी की ममता में मध्यस्थता द्वारा पोम्पे की रोजरी की माता मरियम से तीर्थस्थल में एकत्रित लोगों एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों के विश्वासियों के साथ मिलकर अर्जी करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने क्यूबा एवं फ्लोरिडा में तूफान एयान से पीड़ित लोगों तथा इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के बाद भड़की हिंसा और भगदड़ में मारे गए एवं घायल लोगों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने कहा कि वे क्यूबा एवं फ्लोरिडा के लोगों के करीब हैं जो एक हिंसक तूफान से प्रभावित है। तूफान एयान के बुधवार को एक विनाशकारी शक्ति के साथ फ्लोरिडा की घाटी के तट पर पड़ने से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। फ्लोरिडा में 35 मौतों की पुष्टि के साथ सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि क्यूबा सहित पड़ोसी देशों के अधिकारियों ने 11 और मौतों की सूचना दी है। संत पापा ने प्रार्थना की कि ईश्वर मृतकों को स्वीकार करें एवं पीड़ितों को दिलासा एवं आशा प्रदान करें तथा लोगों के एकजुटता के प्रयास को समर्थन करें। तत्पश्चात पोप ने एक इंडोनेशियाई फुटबॉल मैच में हुए झड़पों में गुजरे जाकर मौत के शिकार और घायल लोगों की याद की। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इंडोनेशिया के मलंग में एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा से अपनी जान गंवा दी है और जो घायल हो गए हैं। पूर्वी जावा में मलंग के कंजुरुहान स्टेडियम में अरेमा के कुछ फैंस घरेलू टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए मैदान में उतर गए, जिसको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने के बाद दम घुटने और कुचले जाकर कम से कम 125 लोगों की मौत हो गई। लगभग 180 अन्य लोग भी घायल हो गए। और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामना अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। प्रभु तुम में ही भरोसा, तुम बिन सदा निराशा, दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा। टूट गए हैं सपने, कभी बनते न वे अपने, जीवन में है अंधेरा, आता नहीं सवेरा, केवल तुम्ही में पाता रहूं प्रभु एक नया बसेरा, केवल तुम्ही में पाता रहूं प्रभु एक नया बसेरा प्रभु तुम में ही भरोसा तुम बिन सदा निराशा दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा बताए मंजिल को कैसे पाए झूठों की संगति में मिलती कभी न राहे तेरी राह में मैं बढ़ता चलूं प्रभु तुम ही हो सहारा तेरी राह में मैं बढ़ता चलूं प्रभु तुम ही हो सहारा प्रभु तुम में ही भरोसा तुम बिन सदा निराशा दे दे मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा प्रभु तुम में ही भरोसा तुम बिन सदा निराशा मुझे हमेशा तेरे प्यार का दिलासा।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अक्टूबर महीने की निवेदन प्रार्थना में पूरी कैथोलिक कलीसिया को समर्पित किया है। अपने वीडियो संदेश में संत पापा ने कलीसिया के सदस्यों को उनकी विविधता में एक दूसरे को सुनने और बाहर के लोगों के लिए दरवाजा खोलने हेतु आमंत्रित किया। अपने वीडियो संदेश में संत पापा ने कहा, धर्म सभा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक साथ चलना। सिनोड ग्रीक में इसका यही अर्थ है, एक साथ चलना और एक ही सड़क पर चलना। और ईश्वर तीसरी सहस्राब्दी की कलीसिया से यही अपेक्षा करते हैं कि वह राहगीर होने और एक साथ यात्रा करने के बारे में अपनी जागरूकता पुनः प्राप्त करे। एक कलीसिया जो एक साथ चलने वाली शैली की कलीसिया है, जो सुनती है, जो जानती है कि हृदय से सुनना सिर्फ कान से सुनने से ज्यादा है। इसका अर्थ है अपनी विविधता में एक दूसरे को सुनना और कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए दरवाजा खोलना। यह राय इकट्ठा करने या संसद आयोजित करने के बारे में नहीं है। धर्म सभा एक सर्वेक्षण नहीं है। यह न एक पवित्र आत्मा को सुनने के बारे में है या प्रार्थना करने के बारे में है, क्योंकि प्रार्थना के बिना कोई धर्म सभा नहीं हो सकती। आइए हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए निकटता की कलीसिया बने। निकटता ईश्वर की शैली है और हम ईश्वर के उन सभी लोगों को धन्यवाद दें जो उनकी ध्यान से सुनने के साथ धर्म सभा के मार्ग पर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि कलीसिया जो हमेशा सुसमाचार के प्रति विश्वस्त और अपना प्रचार करने में साहसी है, धर्म सभा के बढ़ते माहौल में एकजुटता, बंधुत्व और स्वागत का समुदाय बने। और पूरे विश्व के ख्रिस्तीय 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सृष्टि का मौसम मनाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने 3 अक्टूबर को ट्वीट कर ग्रह बचाने के साथ साथ पीड़ित लोगों और असमानता के शिकार लोगों को भी बचाने के लिए प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, जैसा कि हम ग्रह को बचाने की कोशिश करते हैं, हमें उन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो पीड़ित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एकमात्र प्रदूषण नहीं है जो मारता है, असमानता भी हमारे ग्रह को घातक रूप से नुकसान पहुंचाती है। # सृष्टि का मौसम। और संत पापा फ्रांसिस ने 2 से 5 अक्टूबर तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाली स्टेला मारिस समुद्र की प्रेरिताई की 25वीं विश्व कांग्रेस में भाग लेने वालों को एक संदेश भेजा। अपने संबोधन में संत पापा ने उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से वे पहली बार व्यक्तिगत रूप से सभा में उपस्थित हुए हैं और समुद्र की प्रेरिताई की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ को पूरी तरह से मना पा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर संत पापा ने कहा, मैं आपके साथ और स्टेला मारिस से जुड़े सभी लोगों के साथ विश्वास की गवाही और पिछली सदी के सभी लोगों, इतने सारे पुरोहितों और स्वयं सेवकों द्वारा दिखाए गए दयालुता और उदारता के अनगिनत कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो हम सभी के लाभ के लिए हमारे समुद्रों और जल मार्गों पर काम करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सन 1922 में संत पापा पीयूस 11वें की प्रार्थना पूर्ण शुभकामनाओं और उनकी इच्छा को याद किया कि यह अच्छे फल की एक समृद्ध फसल काटेगा। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, हम सभी आभारी हैं कि इस तरह के फल प्रचुर मात्रा में हैं। छोटी और विनम्र शुरुआत से स्टेला मारिस एक व्यापक संगठन के रूप में विकसित हुई है, जो जहाजों और तटों पर असंख्य नाविकों और विविध राष्ट्रीयताओं एवं धार्मिक परंपराओं की समुद्री कर्मियों के लिए आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक सहायता प्रदान करती है। स्टेला मारिस के मिशन के महत्व को कायम रखते हुए संत पापा ने इस तरह के अलगाव से जुड़ी कठिनाइयों पर महामारी के प्रभाव को स्वीकार किया और पीड़ित नाविकों को अपना संदेश दोहराया कि वे अकेले नहीं हैं, वे भुलाए नहीं गए हैं। लेकिन संत पापा के विचारों और प्रार्थनाओं के साथ साथ स्टेला मारिस के पुरोहितों और स्वयं सेवकों के करीब हैं। उधर झान, झारखंड और अंडमान का तीसरा कैथोलिक युवा सम्मेलन झारखंड के महुआडांड स्थित संत जोसेफ पल्ली में 2 अक्टूबर को शुरू हुआ। आग जलती रहे झान युवा मिलन समारोह की विषय वस्तु है। इसका आयोजन डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरितिक प्रशासक और रांची के सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्करेनहास SFX की अगुवाई में 2 से 5 अक्टूबर तक किया गया है। कैथोलिक युवा सम्मेलन की तैयारी के लिए गठित कोर कमेटी के सदस्य फादर विजय टोप्पो ने बतलाया कि मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य है विश्वास में आगे बढ़ना। 4 दिवसीय युवा सम्मेलन में पवित्र मिसा बलिदान, प्रार्थना, प्रवचन, बाइबल क्विज, मनन चिंतन आदि के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वर्तमान में कैथोलिक युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा, जैसे राजनीति में मेरे लिए कैथोलिक होने का अर्थ, ईश्वर की संतान के रूप में मेरी प्रतिष्ठा, मेरे विश्वास का साक्ष्य, कैथोलिक विश्वास की गवाही, प्रभु के सामने मेरा भविष्य और मेरी बुलाहट, कैथोलिक विश्वास में बढ़ना इत्यादि। युवा सम्मेलन का कार्यक्रम 5 अक्टूबर को अपनी चरम सीमा पर होगा, जब भारत और नेपाल में संत पापा फ्रांसिस के प्रतिनिधि प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो जिरेल्ली युवाओं के लिए समारोही ख्रीस्तियाग अर्पित करेंगे और उन्हें आशीष प्रदान करेंगे। उधर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी के धर्माध्यक्ष अभिषेक की रजत जयंती 2 अक्टूबर 2022 को रांची के संत मरिया महागिरजा घर में बड़े धूमधाम से मनाई गई। 18 जुलाई 1997 को वे जमशेदपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए। 27 सितंबर 1997 को रांची के महाधर्माध्यक्ष टेलिस्फोर पी टोप्पो ने उनका धर्माध्यक्ष पावन अभिषेक संपन्न किया। संत पापा फ्रांसिस ने 22 जून 2018 को उन्हें रांची महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया। 6 अगस्त 2018 को संत मरिया महागिरजा घर के महाधर्माध्यक्ष के रूप में उनका प्रतिस्थापन हुआ। तब से वे रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इस पुनीत अवसर पर रांची के बहुत सारे विश्वासियों ने समारोह में उपस्थित होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और महाधर्माध्यक्ष को बधाइयां दीं। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।